1987 का पहले क्लास 18 नंबर के रजिस्टर में 79 रिकॉर्ड चला मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में पाप है कितने कितने पुण्य है कितने देख ले जीवन में शिव भगवान हुआ। अब ये तो बच्चे समझ गए हैं इनका नाम शिव तो नहीं है इनका ब्रह्मा का वो तो है निराकार इनका पास जो बैठा हुआ है उनके लिए बोला इनका माना ब्रह्मा का नाम शिव नहीं है। फिर बोला वह तो है निराकार वह माना कौन जब ब्रह्मा के ही बाजू में बैठा है तो वह क्यों कहा जरूर आने वाला भविष्य के पार्ट के लिए बताया ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की बाजू में जो बिंदु बैठा है सुप्रीम सोल उसके लिए वह बोला नहीं वह शब्द दूर के लिए बोला जाता है तो भविष्य में जो आने वाला परमात्मा पार्ट है उसके लिए बताया कि वो तो है निराकार निराकार का मतलब बिंदु नहीं निराकारी स्टेज वाला और इनका नाम शिव नहीं माने ये तो साकारी स्वरूप वाला है साकारी स्टेज वाला है कौन ब्रह्मा शिव भगवान वाच बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे ब्रह्मा भी मनुष्य है निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है साकार यानी साकारी स्टेज में रहने वाला देहभानि की स्टेज में रहने वाला पति तो पावन नहीं हो सकता पतितों को पावन बनाने वाला नहीं हो सकता और नहीं वो ज्ञान का सागर हो सकता है क्यों क्योंकि जो पतित के संग में आकर के पतित बन जाए शक्ति क्षीण करने वाला बन जाए उसकी बुद्धि तो भ्रंश हो गई तो बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहर सकता ये खास पहचान है विकारी और निर्विकारी की जो विकारी होगा साकारी होगा देह अभिमानी होगा उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं टिकेगा तो वो निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है वो इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं गीता में तो भूल से लिख दिया है कृष्ण भगवान वाच भूल करने वाले कोई मनुष्य ही होते हैं मनुष्यों ने लिख दिया कृष्ण भगवान वाच तो वो तो रंग हो गया क्योंकि कृष्ण तो है साकार देवता है परमात्मा नहीं आप आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा एक तार मिसल है अति सूक्ष्म है इन आंखों से देखी नहीं जा सकती माना इन आंखों से किसी आत्मा के पार्ट को नहीं पहचाना जा सकता इसलिए चाहिए बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए भले हॉस्पिटल में कितना भी माथा मारे आत्मा को देखने के लिए परंतु आत्मा को देख नहीं सकते क्योंकि अति सूक्ष्म है पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। जो मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, बाप उनको ही समझाते हैं। क्या कहा? कीड़े मकोड़ों की आत्माएं जो अति सूक्ष्म नहीं है, जड़त्वमयी है, उनको नहीं समझाते, इनको समझाते हैं। जो आत्मा अति सूक्ष्म है, माना पूरे चौरासी के चक्र में आने वाली विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको ही समझाते हैं। जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट होता हुआ है, माना जिनकी आत्मा में 83 जन्मों का पार्ट बनुदा हुआ है या कम जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है, उनको बाप नहीं समझाते हैं और न वो बाप का समझाया हुआ समझ सकते हैं, क्योंकि वो आत्माएं ऑलराउंड पार्ट धारी अति सूक्ष्म आत्माएं नहीं है। उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं हो सकती। सिर्फ परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराते हैं कि रियलिटी में परमात्मा क्या है, कौन है, कैसे कैसे पार्ट बजाता है, तो आत्मा थोड़े ही करा सकती है रियलाइजेशन, क्योंकि आत्माएं सब हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली। बड़े ड्रामा में जन्म मरण का चक्र है 84 का, और शूटिंग पीरियड में है निश्चय अनिश्चय का चक्र। तो जो आत्माएं खुद ही निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोलती रहती हैं, वो दूसरों को क्या रियलाइजेशन कराएंगी? क्योंकि आत्मा तो है अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी पार्टधारी है। तो बाप कहते हैं मैं हूं अति सूक्ष्म। ड्रामा में सारी एक्ट नुधी हुई है। इनके पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं किसकी बीमारी आदि कोई ठीक करने थोड़े ही आया हूं। वो तो जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। जिसने जो जैसा कर्म किया है वो कर्म उसको भोगना पड़ेगा। तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन नाली फुल ज्ञान का सागर आओ, ऐसे क्यों कहते हो? जरूर मैंने आकर पतितों को पावन बनाया है, तब तो कहते हो हमको आकर पावन बनाओ। आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं आकर के ज्ञान समझाओ, ज्ञान समझा के चले जाओ, फिर हम पावन बनते रहेंगे। नहीं, ये पतित पावन आओ और आकर पावन बनो। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि। जिस गीता से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्मशास्त्र मुख्य कौन से हैं? उस पर बाप समझाते। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। गीता के द्वारा 3 धर्मों की स्थापना, ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, अर्थात देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुनाए रहे हैं जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। इसके द्वारा ज्ञान सुनाए रहे हैं जिससे शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ये पहली मशीनरी हुई ब्रह्मा द्वारा, ये न शूद्रों को ज्ञान सुनाया जाता है तो ज्ञान सुनकर वो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। सेकंड मशीनरी शुरू होती है सूर्यवंशी देवता बनने की। वो इनमें आकर के समझाते आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, इनमें क्यों कहा, इसमें क्यों नहीं कहा है? हाँ, ब्रह्मा के द्वारा भी समझाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भी समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज देते हैं, आत्मा का क्या रूप है, परमात्मा का क्या रूप है। वो बेसिक नॉलेज है, छोटे बच्चों को सुनाई जाने वाली नॉलेज, सामान्य बात बताई जाती, गहरी बात नहीं बताई जाती कि आप वो तो कहने मात्र बल कहते हैं परमात्मा का रूप बिंदु है। क्या कहा, कहने मात्र कह देते हैं परंतु उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ये डिटेल नहीं बता सकते। वो अविनाशी पार्ट कैसे भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है, मिटाने की लाख कोशिश की जाए लेकिन वो पार्ट मिट नहीं सकता, ये कोई जानते नहीं। तुम तो जानते हो। दूसरा मुख्य धर्म शास्त्र हैं चार, कौन कौन से, गीता, कुरान, बाइबल और बौद्धियों का धम्मपद, जिससे मुख्य धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी बौद्धि धर्म का शास्त्र, फिर वृद्धि होती जाती है, पुत्र पोत्र भी सब गीता के ही हो गए। क्या कहा, किसके बाल बच्चे हो गए, ये सब गीता के ही बाल बच्चे हो गए, पुत्र और पोत्र। इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, गीता माना गीत, महिमा, महिमा तो मनुष्य की ही होगी तो गीता भी जरूर मनुष्य रूप में होगी। पहले चैतन्य होगी क्योंकि गीता माता कहा जाता है, माता कोई जड़ किताब को नहीं कहा जाता, और उस माता के बच्चे भी हुए होंगे, फिर बच्चे के बच्चे हुए होंगे तो पुत्र पौत्र हो गए। और कोई शास्त्र को ऐसे नहीं कहेंगे, शास्त्र का अर्थ ही है शास, माना शासन करना, शास्त्र माना शासन करने वाला, विधान, विधाता। तो विधाता तो ब्रह्मा को ही कहा जाता है, ब्रह्म न बड़ी माँ मनमा, मन बड़ी माँ मन जगदम्बा, मन गीता माता, वो ही विधाता, जगती भाती विधाता, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो ये है निराकार भगवत गीता। व्यास भगवान कहते हैं, परंतु वो तो मनुष्य हो गया ना। बाप कहते न तो मैं मनुष्य हूँ और न देवता हूँ, मैं तो ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। ये ऊंच से ऊंच शब्द इसलिए कहा जाता है, भेंट में कहा जाता है ऊंच से ऊंच और नीच से नीच। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम उसके पोत्र भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पोत्रा भी हूँ बच्चा भी हूँ। क्या कहा? शिव बाबा के पोत्र किस हिसाब से? पोत्र तो ग्रंथन को कहा जाता है। पोत्रे और डाडे के बीच में कौन होता है? बाप होता है। तो पोत्रे कैसे? यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता हुआ उसके थ्रू परमपिता परमात्मा शिव आकर के हम बच्चों का डाडे बना। और अभी वर्तमान में वही आत्मा शरीर छोड़ करके फिर दोबारा शरीर धारण करती है, फिर परमात्मा से डायरेक्ट प्रवेश करते हैं। तो बाप भी हुआ। इसलिए बताया कि तुम शिव बाबा के पोत्र भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहते कि दादे का पोत्रा भी हूँ तो बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे डाडे के हो शिववंशी, फिर शिव बाबा अडॉप्ट करके बी के बनाते हैं। क्या अडॉप्शन कैसे होता है? कि तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, हमने बाप को पहचान लिया, बाबा हम तुम्हारे हैं, हमको निश्चय पैदा हो गया। तो बाप फिर उन बच्चों को स्वीकार कर लेते, वो निराकार हो गया और वो साकार हो गया। निराकार कौन? शिव बाप, वो आत्माओं का बाप है। और वो साकार हो गया कौन? जिसके द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो एडॉप्शन जब होती है तो साकार में होती है। निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो। तो साकार रूप स्वरूप धारण करता हूँ, फिर साकार बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बाकी भागवत रामायण आदि कोई धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन हो जाए। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है। बाइबल धर्मशास्त्र, गीता से तो देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं लिख दी हैं, वो तो धर्मशास्त्र नहीं है। बाप तुम बच्चों को मूल बात समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो, वो फिर कहते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, तो उल्टा हो गया।
अगर आत्मा निर्लेप हो तो कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए और आत्मा को सुख दुख के चक्र में भी नहीं आना चाहिए। वास्तव में आत्मा निर्लेप नहीं है, परमपिता परमात्मा निर्लेप है, उसको लेप खेप नहीं लगता, वो कर्म बंधन में नहीं बंधता, उसको संग का रंग नहीं लगता। और वो भी प्रैक्टिकल बात है, ऐसे नहीं बिंदु बाप को संग का रंग नहीं लगता, नहीं वो बिंदु भी जब साकार स्वरूप में आता है तो जिस साकार स्वरूप के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाता है उसको विकारों की लेप खेप का बंधन नहीं लग सकता, संग का रंग नहीं लग सकता। और जितनी भी मनुष्य आत्माएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि बड़े से बड़े महात्मा धर्म पिताएं क्यों न हो, उनको भी संग का रंग लगता है और संग के रंग लगने से वो नीचे गिरते जाते, खुद भी नरक में गिरते और संगी साथ ही भी नरक में जाते। एक परमात्मा पार्टी ही ऐसा है कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा इस सारी शक्ति को समो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है, जिसको खुद ही संग का रंग लग जाए वो दुनिया को पति से पावन कैसे बनाएगा। तो जो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है वो तो उल्टा ज्ञान हुई, वास्तव में आत्मा निर्लेप नहीं है, परमात्मा जिस विशेष पार्टधारी हीरो आत्मा में प्रवेश करता है और जिस समय प्रवेश करता है उस समय वो आत्मा निर्लेप पार्ट बजाती है। तो उन्होंने समझ लिया कि आत्मा निर्लेप है, माने उस प्रजापिता के पार्ट को फॉलो करने लग पड़े, किसकी आत्मा निर्लेप है तो हमारी भी आत्मा निर्लेप है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सब में कोई परमात्मा प्रवेश थोड़े ही है, परमात्मा एक व्यापी है या सर्वव्यापी है, परमात्मा तो एक व्यापी होकर आता है। उस समय जिस समय परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं सदाकाल के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि त्रेता युग में राम निर्लेप है या और युगों में जब तुलसीदास बना या वाल्मीकि बना तो राम की आत्मा निर्लेप है, वहां तो परमात्मा शिव का उसमें प्रवेश होता ही नहीं। ऐसे तो राम वाली आत्मा भी निर्लेप नहीं है, अगर निर्लेप हो तो 84 के चक्र में क्यों आए। लेकिन वास्तव में ये संगम युग का यादगार है, जो सन्यासियों ने उसे फॉलो कर लिया तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा वास्तव में निर्लेप नहीं है, आत्माओं को सबको निर्लेप लेप छेप लगता है A to Z, राम से लेकर के और 500 करोड़ की जो भी मनुष्य आत्मा सबको लेप छेप लगता है। लेकिन निराकार राम जब प्रवेश करता है उस समय वो पार्ट जो बजाता है वो निर्लेप पार्ट साबित हो जाता है, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जो प्रभावित होता है उसे प्रजा कहा जाता है। प्रजा माना रचना, तो परमात्मा जिस स्वरूप के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाता है वो तो बापों का बाप है, वो किसी की रचना नहीं हो सकती, बाप कभी बच्चों से प्रभावित नहीं हो सकता। माँ प्रभावित हो सकती है लेकिन बाप प्रभावित नहीं हो सकता, दुख सुख आत्मा ही फील करती है। महात्मा दिखाते हैं, अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, हम सहन नहीं कर सकते हैं, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ भी है कि परमात्मा बाप हजारों सूर्यों से तेजोमय है, तेज मन
सफेद माना लाइट। लाइट कोई स्थूल सूर्य नहीं है जिसकी स्थूल लाइट होगी, ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान सूर्य की कौन सी लाइट होगी? ज्ञान की लाइट। तो इतना तीक्ष्ण ज्ञान सुनाते हैं, साधारण ब्रह्मा के मुख से सुनाए हुए ज्ञान से, मीठी मीठी बातों से जब बात बुद्धि में नहीं बैठती तो इतनी तीखी बातें सुनाते हैं कि सुनने वाले सहन नहीं कर सकते। बाकी ऐसा नहीं है तो कोई स्थूल लाइट उसमें ऐसी निकलती है लेसर किरणों के मुताबिक जो सहन नहीं कर सकते। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होगा। पहले जो बंद आंखों से साक्षात्कार होता था वही साक्षात्कार अब अंत में खुली आंखों से होगा बुद्धि के द्वारा। दो प्रकार का साक्षात्कार होता है, एक तो बंद आंखों का दिव्य साक्षात्कार और दूसरा बुद्धि का साक्षात्कार। तो आगे जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता था, समझते हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो तो हो जाता है, परंतु इसमें फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर पतितों से पावन बनाने आया हूँ, बच्चों का अपना परिवार भी है राज परिवार, ऐसे नहीं कि घर का सुधार ना हो तो बात बन जाएगी, नहीं, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। तो ये राज फैमिली सारी ही है 16108 का संगठन, जो परमात्मा बाप से पतित से पावन बनने का पहले वर्षा प्राप्त करते। तो राजयोग सिखला कर पतित से पावन बनाने आया हूँ का मतलब सही सही अर्थों में राजयोग कितने सीखते हैं? सिर्फ 16108
18 नंबर के रजिस्टर में 20987 का पैकेट लाख 82 के रिकॉर्ड है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने। नीचे नीचे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंच बाहर की मौसम है ये संगम योग। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिलते,
महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं, उन्होंने तो दिखाया कि पांडव पहाड़ पर जाकर गल गए। तो समझते हैं कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर चढ़ करके और बर्फ में गल गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। पहाड़ का मतलब है ऊंची चीज। पंडा बाप के बच्चे पांडव पुरुषार्थ की ऐसी ऊंची चीज पर चढ़े कि जिस ऊंचाई में उनका देह बहन गल गया, देवहन खलास हो गया, साथ में कुत्ता भी ले गए, माना सिर्फ अपना ही देवहन खलास नहीं किया लेकिन कुत्ता भी जाकर के साथ में गल मरा, माने कामी कुत्ते जैसी आत्माओं को भी संग का रंग लग सकता है और वो भी पतित से पावन बन जाती है। अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि के लिए भी दिखाते हैं कि बुद्ध रूप के पांव का स्पर्श हुआ और वो भी पावन बन गया। तो क्या पांडव कुत्तों को पालते थे? कुत्तों की बात नहीं है लेकिन कामी कुत्ता कहा जाता है, दिविचारी को कुत्ता कहा जाता है। तो जन्म जन्मांतर जिन्होंने दिविचार में जीवन बिताए ऐसी आत्माएं भी पांडवों का संग पाकर के
पाते चक्के पावन देवता बन जाते। तुम बच्चे तो कुत्ता पालते नहीं हो है? कौन सा जानवर होता है जो बहुत वफादार होता है, वफादारी के कारण उसको घर में रखते हैं? कुत्ता बहुत वफादार माना जाता है। तो तुम पांडव तो कुत्ता नहीं पालते हो, तुम नहीं पालते हो कुत्ता, फिर पालता कौन है? कौन पालता है कुत्ता? कुत्ता और बंदर को पालते हुए किसी को देखा है? कौन को? हाँ, विदेशी जो होते हैं क्रिश्चियंस मोस्टली कुत्ता को बहुत प्यार करते हैं और बंदर को बहुत प्यार करेंगे, या तो बंदर पालेंगे या कुत्ता पालेंगे। तो तुम तो कुत्ता नहीं पालते हो, शरण देने वाले नहीं हो, तो पालता कौन है? क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस ऑफ क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, वो क्रिश्चियंस और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, क्राइस्ट और कृष्ण की। तुम बच्चे कुत्ता नहीं पालते हो, कुत्तों को पाल करके उनको वर्षा नहीं देते हो, लेकिन कृष्ण की सोल वर्षा किसको देगी है? तुम तो कृष्ण को वर्षा देते हो, कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देने के निमित्त बनते हो। जो बाबा ने डायरेक्शन दिया बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करना है जो मम्मा बाबा माना कृष्ण और राधा की आत्मा है तुम्हारा वारसदार आकर के बने, तो तुम तो कृष्ण जैसों को वर्षा देते हो। और सतयुग में कृष्ण से किसको वर्षा मिलेगा? सेकंड सेकंड नारायण को। उसके जन्म कितने होंगे? लेकिन नारायण के कितने जन्म होंगे? 83 जन्म होंगे, एक जन्म उसका कम होगा। क्यों? जरूर पूरी पढ़ाई परमात्मा बाप से नहीं पढ़ी, कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की सोल से तो पढ़ाई पढ़ी, मनुष्य गुरु से तो पढ़ाई पढ़ी, लेकिन परमात्मा बाप का जो डायरेक्ट पार्ट है परमात्मा पार्ट, उससे पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, इसलिए एक जन्म कम हो गया, चौथाई कला कम हो गई। पुरुषार्थ तो पूरा किया लेकिन अधूरापन रह गया, क्योंकि गुरु जिन के अंदले चेला सत्यना। तो तुम कुत्ता नहीं पालते हो, तुम क्या करते हो है? तुम जब शब्द कहा जाता है मुरली में तो बाबा किससे बात करते हैं? बात तो नंबर वार बच्चों से करते हैं, लेकिन अव्वल नंबर भी कोई होगा ना, कौन है? कोई नंबर वार बच्चे हुए ना तो उनमें अव्वल नंबर भी कोई होगा, तो अव्वल नंबर कौन हुए? जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं होंगी उनके लिए बताया कि तुम कुत्तों को शरण नहीं देते हो। कुत्ते का मान कितना रखा है? बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, कितने मान रखा है? क्रिश्चियंस ने, क्रिश्चियंस ने रखा है तो राशि मिलने वाले ने भी रखा होगा। इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातरी किसकी होती है? मुरली में क्या बोला कुमारिका की, कन्या माताओं में कुमारिका की, और भाइयों में किसकी खातरी सबसे जास्ती होती थी? बाबा सबसे ज्यादा मान किस भाई को देते थे है? नहीं,
ब्रज किशोर बाबू को।
कराची में वही एक ऐसा भाई था जो बाहर से रसद लाता था, मुसलमानों के संसर्ग संपर्क में रहता था, अनेक जन्मों की फाउंडेशन की शूटिंग का पीरियड था कराची का पीरियड, जहाँ सचिव की सतो प्रधान शूटिंग हो रही थी। उसमें भी एक आप जबकि पाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? क्या कहा? जबकि बाप का वर्षा मिलता है, सुप्रीम सोल बाप उतार करके वर्षा देते हैं प्रैक्टिकल साकार में नई दुनिया का, तो हम उस सुप्रीम सोल बाप से डायरेक्ट वर्षा लेने के अधिकारी बने या देवताओं से वर्षा लेने का अधिकारी बने? कृष्ण किससे वर्षा लेगा? देवता से वर्षा लेगा या सुप्रीम सोल बाप से वर्षा लेगा डायरेक्ट? कृष्ण तो देवता का बच्चा होगा ना, तो वर्षा किससे लेगा? देवता से वर्षा लेगा। और तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हो, तो जब हमें डायरेक्ट बाप से वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? रावण का वर्षा कौन सा हुआ? सुप्रीम सोल बाप जो साकार में आकर के वर्षा देते हैं 84 जन्म या 21 जन्मों का से, तो उसके मुकाबले जितने भी जन्म हैं वो सब रावण का वर्षा हुआ। क्या प्रभावित माना प्रजा, प्रजा को रचना कहा जाता है, तो बच्चे किसके हुए? जिससे प्रभावित हुए वो हो गया पाप। यानी राधा कृष्ण जो सतयुग में बनेंगे वो संगम युग में किससे प्रभावित हुए? ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा पापा को भी डायरेक्शन देते थे, हम उनकी मत पर चलते थे, किससे प्रभावित हुए? आज वाली कोई आत्माएं थी ना जिनसे प्रभावित हुए? हम उनकी मत पर चलते थे। अरे परमात्मा पाप आया हुआ है तो हम उनकी मत पर क्यों चलें? फिर किसकी मत पर चलें? मत पर किसकी चलें? पाप की मत पर चलना चाहिए। तो चलते थे इसका मतलब अब, पहले चलते थे और अब कोई और की मत पर चलने लग पड़े, तो अंतर पड़ गया। अंतर क्या पड़ गया? कि जो डायरेक्शन है ऊंच से ऊंच प्राप्ति का, कि नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है, वो ऊंची प्राप्ति बुद्धि से निकल गई। जैसे ब्रह्मा का पार्ट, बड़ी माँ का पार्ट, मुलायम पार्ट हो जाए, बच्चों से भी प्रभावित हो जाती है माँ। बाप बच्चों से प्रभावित नहीं होता, यानी सतयुग में सेकंड जन्म से लेकर के और आखिरी जन्म तक जो भी वर्षा है, सेकंड नारायण से लेकर के आठवें नारायण तक, तो किसका वर्षा हुआ? तो सब रावण का वर्षा हो गया। वो रावण से वर्षा लेने वाले सब कन्वर्टेड ब्राह्मण हैं, जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न, उनमें से एक भी नारायण नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा बाप से डायरेक्ट पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, इतने निर्माण चित्त नहीं बन पाते जो परमात्मा बाप से पढ़ाई पढ़ सके। इसलिए इस वर्ष अव्यक्त वाणी में क्या डायरेक्शन विशेष दी है? बच्चे निर्माण बनो और नई शक्ति का निर्माण करो। मान मर्तव्य में रहेंगे तो नई दुनिया का निर्माण करने वाले नहीं बन पाएंगे, तो क्यों न मीठी बन जाए? सर्वगुण संपन्न बनना है, यह है ही राजयोग नर से नारायण बनने का। क्या कहा? पाप का वर्षा और रावण का वर्षा,
बाप का वर्षा कौन सा है? नर से नारायण जैसा बनना, नर से प्रिंस जैसा बनने की बात नहीं बताई, नर से नारायण जैसा बनना और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना, अर्थात राजा ही पाने का ये। गरीबों को कोई डॉक्टर या वकालत इस जन्म में पढ़े और उसे कहा जाए अगले जन्म में डॉक्टर या वकील बन जाना, तो कोई ये एमर्जेंट हुई कि कोई पढ़ेगा? बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संबंध को पढ़ाता हूँ, तीन चार बार कल्प कल्प बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि शूटिंग पीरियड में हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं समाई हुई होने के कारण एक कल्प हो जाता है। हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं गुजरी माने एक कल्प, दूसरे युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं गुजरी माने दूसरा कल्प। इसलिए बोला मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ा, यह है चरती का लग, बाकी सब है उतरती का लग, उतरती कला और चढ़ती कला, इसका राज तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना कि उतरती कला कैसे होती है और किसके द्वारा होती है, और चढ़ती कला कैसे होती है और किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है उतरती कला, अनेक देहदारी गुरुओं के द्वारा उतरती कला और एक एक परमात्मा पार्ट के द्वारा चढ़ती कला। एक सेकंड में हमारी चढ़ती कला हो जाती है, एक सेकंड में हमारी चढ़ती कला हो जाती है, एक सेकंड अभी हुआ या नहीं हुआ है? 50-60 वर्ष हुए या एक सेकंड हुआ है? ब्रह्मा से विष्णु बना एक सेकंड में है? ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड में नहीं बना, तो हमारी चढ़ती कला कैसे हो जाएगी है? क्यों अब्बल नंबर का बच्चा कौन सा है? बाबा का फर्स्ट रचना कौन सी है? फर्स्ट रचना कौन है? ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा ही तो विष्णु नहीं बना, तो जो द्वयम टाइम नंबर के बच्चे होंगे वो कैसे बन जाएंगे? ब्रह्मा कहाँ है अभी? रचयिता शक्ति पर है तो जरूर रचना भी जरूर इस शक्ति पर साकार में होनी चाहिए। तो जो गायन है ब्रह्मा को विष्णु एक सेकंड में, ये कहाँ का गायन हुआ? प्रैक्टिकल बात का गायन है शास्त्र में या इम्प्रैक्टिकल बात का? जरूर कोई बात प्रैक्टिकल में हुई है, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा को विष्णु बना है, इसका मतलब जरूर ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके इतने प्रैक्टिकल ब्रह्मा माने बड़ी माँ माने जगदम्बा का पाठ बजाय रही। ये है फर्स्ट रचना परमात्मा पाप। तो एक सेकंड में हमारी चलती कला होगी, ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। पाप बैठ आत्माओं से बच्चों से बात करते हैं कि मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पति से न बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? और नहीं होगा तो तीर नहीं लगेगा, भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा गड़ा, उल्टा गड़ा तो क्या करेंगे है? उल्टे घड़े में कितना भी पानी भरा हुआ हो क्या होगा? अब निकल जाएगा तुरंत का तुरंत, सुनेगा तुरंत का तुरंत निकल जाएगा। परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए, हजारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिशन पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे चिकिले बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
19 नंबर के रजिस्टर में 16-12 शताब्दी का पहले क्लास सभी ब्राह्मणों को पता है कि सिविलियन की है मुख्य आजकल बर्थडे तो सबका मना रहे परंतु सब की संबत का पता है शिव जयंती की संबत का कोई को पता नहीं। मनुष्यों का संबत तो गाते आए क्राइस्ट का संबत पूछेंगे तो झट बताएंगे उनका भी बर्थडे मनाते हैं। शिव जयंती आगे तुमने इतने धूमधाम से नहीं मनाई अब बच्चों को विचार चलना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े। इस बात का शिव जयंती की किस बात का पता पड़े और सबके बर्थडे का संबत पता है शिव जयंती के संबत का पता नहीं है सबका बर्थडे मनाते मनुष्यों का संबत तो गाते हैं लेकिन शिव बाबा के संबत का किसी को पता नहीं है। तो बच्चों का विचार चलाना है बच्चों को विचार चलाना है किस बात का कि दुनिया को कैसे पता पड़े किस बात का कि शिव बाबा का संबत कौन सा है क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है इतना बड़ा आदमी उनकी ऐसे धूमधाम से जयंती मना रहे जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए और 5,000 खर्चा होगा खर्चा नहीं है ढेर बच्चे हैं गुनगुन से तालाब भर जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरों का हीरों से वजन किया था वो तो कुछ भी नहीं है ये तो कल्याणकारी बाप है इससे ठहली किया आधा खाते क्यों क्योंकि आधा खां को हीरों से वजन किया गया ज्ञान की भाषा में हीरे कौन है जो हीरो पार्ट बजाने वाले रुद्रमाला के मणके हैं वो ही हीरे तो वजन करना मन समानता दिखाना कहते भी हैं 3-3-108 माना जिनका टाइटल दिया कि 108 से भी श्रेष्ठ। तो वजन किया ना, किससे वजन किया? 108। तो आगा खान को भी हीरो से वजन करते हैं, वजन किया भी क्यों लगा दिया है? तुम बच्चों ने जरूर संगम युग में सारे संसार के सामने शिव बाबा को वजन किया होगा और वजन करके बताया होगा कि सारी दुनिया की जो बीज रूप आत्माएं हैं, कंट्रोलर आत्माएं, राजाएं और महाराजाएं एक तरफ और शिव बाबा दूसरी तरफ, ये वजन करके बताया होगा। उनके तो सब पैसे जाते हैं विकारों में, जो वजन करते हैं पैसों से या हीरों से, वो सारी कीमत कहाँ चली जाती है? विकारों में चली जाती है। तुम बच्चों को तो इन विकारों से छुड़ाया जाता है, हमारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयमाला में आएंगे। क्या बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन उनमें प्रजा बनने वाले तो ढेर हैं, और विजयमाला में जो पिरोई जाए, जो विजय प्राप्त करें विकारों पर, विजयंती, अंत में जब फाइनल परीक्षा हो तो विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले साबित हों, वो बहुत थोड़े, प्रजा तो ढेर बनेगी। यह है राजयोग, ऐसा योग जिसमें राज भरा हुआ है, इस बात का राज। और संग तोड़ एक संग जोड़, मेरा तो एक दूसरा न कोई। ये राग भरा हुआ है, इसी बात की परीक्षा होगी, फाइनल पेपर होगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, किससे नष्टो मोहा? जिन देह और देह के संबंधियों से 63 जन्म का लगाव लगा पड़ा है, वो यहाँ साबित भी होता है, समझते भी हैं, उनसे नष्ट होगा। राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सके। क्या बाबा ने कोई बच्चे को सोते हुए देख लिया या क्लास में बैठे बैठे सुस्ती कर रहे, तो क्या बोला? पढ़ाई में अथवा योग में, बाबा पढ़ाते भी हैं, पहले बच्चों को याद में बैठाते हैं, फिर पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो दोनों बातों में अगर सुस्ती की तो क्या नहीं प्राप्त कर सकेंगे? राजा ही नहीं प्राप्त कर सकेंगे, माना बाप का वर्षा जो राजा ही है, राजयोग से राजा ही, वो नहीं मिल सकेगी, क्योंकि बहुत लिमिट है इस बात की, राजाओं की। राजा बहुत थोड़े बनेंगे और बाकी सारी प्रजा बनेंगे। जो थोड़े राजाए बनेंगे, एक एक राजा की लाखों के तादाद में प्रजा होगी। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है,
हम थाली कटोरी नहीं साफ कर सकते। ऐसे देह अभिमान वाले फिर गिर पड़ते, अपना अकल्याण कर बैठते। बाबा थोड़े ही सर्विस लेते, जो बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, तुम्हारी सेवा लेंगे कौन? शरीरधारी जो तुम्हारे ही भाई बहन हैं वही सेवा लेते हैं, उन्हीं की सर्विस करनी है। बाबा तो खुद ही सर्विस हुई, बाबा तो देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। माँ बाप को बच्चे कब अलाउ नहीं करेंगे इस बात के लिए? जो बच्चे होंगे वो माँ बाप को कब अलाउ नहीं करेंगे इस बात के लिए के? कि माँ बाप हमारे बैठ बर्तन माजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वो भी हैं, कौन? माँ बाप भी पढ़ते हैं, शिव बाबा है पढ़ाने वाला, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में यह पास होते कौन? बाबा। सर्विस का शौक बहुत रखना, घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है, ज्यादा घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। गीता पाठशाला का कनेक्शन किससे है? गीता पाठशाला में पढ़ाने वाला कौन होगा टीचर? जब गीता की पाठशाला है, गीता की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो हेड टीचर कौन होगा? प्रिंसिपल टीचर कौन होगा? गीतापति भगवान? तो घर घर में गीता पाठशाला खोलिए। जब घर घर में गीता पाठशाला होगी, किसके घर में? सारी दुनिया के घर में नहीं, ब्राह्मण बच्चों के घर घर में गीता पाठशाला होगी तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक पाप का परिचय देंगे। बेहद के पाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है? अदर का पाप तो एक दो चार मकानों का वर्षा देगा, हद की प्रॉपर्टी देगा, और जो बेहद 500 करोड़ का पाप है वो कैसे बेहद का बर्तन देता है वो आकर के समझो। कहाँ आकर के समझो? गीता पाठ। बाबा राय देते इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए। ऐसी प्रेरणा आई खर्चे का हर्जा नहीं, अखबार में पढ़ने से बहुत निकल आएंगे, चार पेज अखबार कर लो, धीरे धीरे पेज भी बढ़ाते जाते, पहले एक दो पेज पर दो तीन पेज, फिर अब
विचार की। मैटर बना करके डालो, कितना लंबा मैटर बताए, 4 पेज का रंगीन चित्र छपाओ, अखबार के चारों चित्रों को 4 पेज में रंगीन चित्र बनाकर छपाओ और मैटर भी लिखो। रंगीन बिजली छोटी होती है, उसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। वीकली संडे टू संडे रंगीन चित्र वाला अखबार भी निकलता है। अच्छा, बाबा सर्वश्रेष्ठ बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग मैटर छपा कर भी अखबार के साथ दे सकते हैं, वो भी अखबार वालों से प्रबंध कराए सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर सोते हैं वो भी प्रबंध किया जा सकता है। आगे ऐसे अलग कागज छपा कर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे, अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है। शिव जयंती का तो 1 दिन है, वो धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
ओम शांति। 19 नंबर के रजिस्टर पर 28/12/86 का प्रातः क्लास गीता मरना तेरी गली में।